आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की तरक्की रियासतों की जामे और तेज रफ्तार तरक्की पर मुनहसर है। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो एक दूसरे के बेहतरीन तौर तरीकों और तजुर्बात से सीखें। मरकजी वजारत सेहत ने सफर के मुख्तलिफ वसाइल के जरिए इंसानी आजा के नकलो हमल के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। भारतीय फौज ने हिमाचल प्रदेश में बादल के फटने और मिट्टी के तोदे खिसकने से मुतासिरा इलाकों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और राहत और बचाव की कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। ज़रई इक्तिसादी माहिरीन की बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मंदुबीन ने भारत की ज़रई सलाहियत और उसकी मजमू तरक्की की सताइश की है। और पेरिस ओलंपिक्स में आज सह पहर भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला सेमीफाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से होगा। और क्रिकेट में आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। गवर्नरों की दो रोजा कॉन्फ्रेंस कल राष्ट्रपति भवन में इख्तिताम पजीर हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाहमी सीखने के जज्बे के तहत जामे बातचीत के लिए गवर्नरों की इज्तिमाई कोशिशों की सताइश की। अपने इख्तितामी कलमात में उन्होंने इस बात को सराहा कि गवर्नरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने दफ्तर के कामकाज को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपने कीमती ख्यालात और तजावीज के साथ सामने आए। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि इन तजावीज पर अमल किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार रियासतों की जामे और तेज रफ्तार तरक्की पर है और तमाम रियासतों को एक दूसरे के बेहतरीन तौर तरीकों और तजुर्बात से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने गवर्नरों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी बहबूद के तमाम प्रोग्रामों के सम्राट हर अहल शख्स तक पहुंचे ताकि जामे तरक्की का हदफ हकीकी मानों में हासिल किया जा सके। इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि दो रोजा कॉन्फ्रेंस ने तमाम शुरका के जहनों पर अनमिट नकूश छोड़े हैं जिन्होंने अहम मसाइल पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि गवर्नरों को मालूमात हासिल करने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए और मौसर काम करने के लिए मुतालिका रियासती हुकूमतों के साथ मुस्तकिल राब्ता बरकरार रखना चाहिए। अपने खिताब में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने गवर्नरों पर जोर दिया कि वो राजभवन में गवर्नेंस का एक मिसाली नमूना तैयार करें। उन्होंने गवर्नरों पर जोर दिया कि वो अपने कामकाज में टेक्नोलॉजी को अपनाएं और डिजिटाइजेशन को फरोग दें। वजीर आजम ने खासतौर पर तालीमी इदारों के साबिक तलबा के नेटवर्क्स की ताकत को इस्तेमाल करने पर जोर दिया और उनसे अपील की कि वो तालीमी कैंपस में मनुष्यात से पाक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाएं। मरकजी वजारत सेहत ने सफर के मुख्तलिफ वसाइल जैसे फजाई, सड़क, रेलवे और आबी गुजरगाहों के जरिए इंसानी आजा के नकलो हमल के लिए मायारी तरीकेकार SOP जारी किया है। हुकूमत की जानिब से जारी किया गया ये मायारी तरीकेकार मुल्क भर में इंसानी आजा की पेवंदकारी से मुतालिक अफराद के लिए एक रहनुमा खतूत का काम करेगा। सेहत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये रहनुमा खतूत मुल्क भर में आजा की बाजियाफ्त और पेवंदकारी के लिए एक खाका है जिससे इस शोबे में बेहतरीन तरीकों और मायार को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसानी आजा की नकलो हमल को हमवार करने के जरिए हुकूमत का मकसद नायाब आजा के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना और ऐसे हजारों मरीजों को उम्मीद दिलाना है जिनकी जिंदगी आजा की पेवंदकारी के जरिए बचाई जा सकती है। भारतीय फौज ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में बादल फटने और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के बाद मुतअद्दिद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए रियासत में कुदरती आफात के दौरान जारी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और राहत और बचाव की कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। फौज ने कहा है कि सैलाब से मुतासिरा समेज में इमदाद और राहत की कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर तकरीबन 90 सिविलियन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और फौज के तिब्बी कैंप में इनका इलाज किया जा रहा है। वायनाड में तोदे गिरने से मुतासिरा इलाकों में कल तलाशी मुहिम के दौरान 16 लाशें बरामद की गईं। 16 और लाशें बरामद की गईं। तलाशी मुहिम आज सुबह फिर से शुरू होगी। वजीर आला पिनरई विजयन ने कल कहा था कि इन वाकयात से बचने वाले अफराद को एक महफूज मकाम पर फिर से बसाया जाएगा और उनके लिए एक नई बस्ती बसाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए इमदादी पैकेज जल्द तैयार होगा। 10,000 से ज्यादा लोग मुख्तलिफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। ज़रई इक्तिसादी माहिरीन की 32वीं बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ICAE में गैर मुल्की मंदूबीन ने भारत की ज़रई सलाहियत और उसकी मजमूई तरक्की की सताइश की है। इस 6 रोजा प्रोग्राम में मुमताज बैन अल-अक़वामी मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इन मंदूबीन ने भारत की ज़रई हुसूलियाबियों और इख्तिराआत की तारीफ की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में 75 ममालिक के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली एक नुमाइंदा हासमीन ने आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत के मकाम की तारीफ की और कहा कि भारत मुतअद्दिद ज़रई अशिया की पैदावार करने वाला एक सरकर्दा मुल्क है। उन्होंने कहा कि भारत का मुतनव्वे इकोसिस्टम और ज़रई तालीम का बुनियादी ढांचा ज़राअत की सतह पर मुल्क की कामयाबी में अहम रोल अदा करता है। कीनिया की नुमाइंदगी करने वाले डोडो मैकवल ने कहा कि भारत ज़राअत के शोबे में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और यहां जो तहकीक की जा रही है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी ज़रई तरक्की के जरिए दीगर मुल्कों को खुराक फराहम करने में भारत के रोल को सराहा। जापान की एक मंदूब सोब्रन ने मुतअद्दिद किस्म की ज़रई मसनूआत की पैदावार करने और बरामद करने की भारत की सलाहियत की तारीफ की। उन्होंने रिवायती निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजीज को हम आहंग करने के लिए भारत और दीगर मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन की अहमियत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक मुस्तहकम ज़रई शोबे के साथ गजाई अशिया के इजाफी जखायर का हामिल मुल्क के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत आबोहवा की तब्दीली से दरपेश चैलेंजों के दरमियान आलमगीर सतह पर भूख और नाकिस तगजिये के मसाइल को हल करने में मदद की खातिर अपने तजुर्बात मुश्तरक करने के लिए तैयार है।
आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, सुगर, टी, फेम्ड फिश इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आसाम के मोरे गांव में टाटा के सेमीकंडक्टर यूनिट की तामीर का काम शुरू हो गया है। नई दिल्ली में प्लांट के बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि यह यूनिट 27,000 करोड़ रूपये की सरमायाकारी से कायम किया जायेगा और इससे 15,000 बराह रास्त जबकि 11,000 से 13,000 बिलवास्ता रोजगार पैदा होंगे। मरकजी वजीर ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो रोजाना 4,83,00,000 सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्लांट में तैयार की जाने वाली चिप्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों, नीज मवासलात और नेटवर्क की बुनियादी ढांचे में इस्तेमाल होंगी।
ये बहुत ही खुशी की बात है कि इससे आसाम में 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे करीब 15,000 डायरेक्ट जॉब्स और 11,000 से 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसमें केवल उसी यूनिट के जॉब्स को काउंट करना उचित नहीं होता है। जैसे सेमीकंडक्टर यूनिट आता है उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी उसके साथ ही साथ आने लगती है।
मरकजी वजीर ने बताया कि इस साल 29 फरवरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने आसाम के मोरे गांव में टाटा के सेमीकंडक्टर यूनिट की तजवीज को मंजूरी दी थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे के दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया आज देर शाम नई दिल्ली से फिजी के नारी के लिए रवाना होंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں فجی کی راجدھانی سووا میں دو طرفہ میٹنگیں کریں گی. صدر جمہوریہ فجی کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گی اور برادریوں سے بات چیت کے پروگرام میں شرکت کریں گی. نیوزی لینڈ میں صدر جمہوریہ دو طرفہ میٹنگیں کریں گی اور ویلنگٹن میں ایک بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس سے خطاب کریں گی. وہ آکلینڈ میں بھارتی برادری کی جانب سے استقبالیے میں بھارتی برادری اور فرینڈ آف انڈیا سے بھی بات چیت کریں گی. اپنے دورے کے آخری مرحلے میں صدر جمہوریہ تیمور لیستے جائیں گی. وہ راجدھانی دلی میں دو طرفہ میٹنگیں کریں گی اور بھارتی برادری کی جانب سے منعقدہ استقبالیے میں شرکت کریں گی. توقع ہے کہ صدر جمہوریہ کا تین ملکوں کا یہ دورہ بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کو مزید تقویت فراہم کرے گا اور جنوب مشرقی ایشیا اور بحر القاہل خطے پر بھارت کی خصوصی توجہ کو مستحکم کرے گا. سری سائی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار.
نئی دلی میں آکاشوانی میوزک کانسرٹ 2024 کا آغاز ہو چکا ہے. یہ دو روزہ کانسرٹ آکاشوانی کے رنگ بھون آڈیٹوریم میں منعقد کیا جا رہا ہے. میوزک کانسرٹ کے پہلے دن معروف موسیقار پنڈت راجیندر پرسنا نے بانسری پر سامعین کو مسحور کر دیا. پنڈت جے تیرتھ میووندی نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مغربی مدھیہ پردیش اور مشرقی راجستھان میں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے جنوب مغربی راجستھان اور اس کے نواحی علاقوں میں سخت موسمی حالات اور کم دباؤ والا علاقہ بننے کی پیش گوئی کی ہے. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدھیہ مہاراشٹر، کونکن اور گوا کے ساحلی علاقوں میں آج موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے. محکمہ نے مزید کہا کہ جموں کشمیر اور پنجاب میں آج کہیں کہیں شدید بارش ہونے کی توقع ہے. اس کے علاوہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، راجستھان، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت میں اس مہینے کی 10 تاریخ تک شدید بارش کا امکان ہے. دوسری جانب جنوبی بھارت میں آج ساحلی کرناٹک میں شدید بارش کا امکان رہے گا اور کیرلا، ماہے اور تمل ناڈو میں کل تک شدید بارش پیش گوئی ہے. محکمہ موسمیات نے اس ہفتے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ درمیانی درجے کی بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار.
ایک اہم پیش رفت کے تحت بھارت کی انتخابی کمیشن کی اعلی سطح کی ایک ٹیم 8 اگست سے جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر پہنچ رہی ہے تاکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لے سکے. پیرس اولمپکس میں آج سیمی فائنل میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین کا مقابلہ ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والے ڈنمارک کے وکٹر ایکسلسن سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے ہوگا. ٹوکیو اولمپک میں میڈل حاصل کرنے والی مکے باز لولینا بورگوہائن کی خواتین کے 75 کلوگرام زمرے کے کوارٹر فائنل میں چین کی لی کیان سے مقابلہ کریں گی. کرکٹ میں آج 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. یہ میچ آج کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخبارات نے زرعی اقتصادی ماہرین کی بین الاقوامی کانفرنس سے وزیر اعظم کے افتتاحی خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے عالمی غذائی بحران کے حل کے لیے بھارت کوشاں، بھارت کا زرعی تنوع عالمی غذائی تحفظ کے لیے امید کی کرن. اخبار پرتاپ نے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ قوم کی تعمیر میں اجتماعی تعاون کرنا ہوگا. اخبار انقلاب نے وزیر داخلہ امیت شاہ کی لوگوں سے گھروں پر ترنگا لہرانے کی اپیل کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے. اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک اہم سرخی ہے کیدارناتھ میں پھنسے 9,099 افراد کو بحفاظت نکالا گیا. اخبارات نے صومالیہ کے دارالحکومت میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 32 افراد کی ہلاکت کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. اخبارات کی دیگر بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. علاقائی جنگ نہیں چاہتے مگر ہر جگہ اپنی افواج کا دفاع کریں گے، امریکی محکمہ دفاع کا بیان.
آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی ریاستوں کی جامع اور تیز رفتار ترقی پر منحصر ہے. انہوں نے ریاستوں سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے بہترین طور طریقوں اور تجربات سے سیکھیں. مرکزی وزارت صحت نے سفر کے مختلف وسائل کے ذریعے انسانی اعضاء کے نقل و حمل کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. بھارتی فوج نے ہماچل پردیش میں بادل کے پھٹنے اور مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد، راحت اور بچاؤ کی کاروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔